श्री साईराम साईं वचनामृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
Namaste. दर्शन दे साई
साधु परमात्मा के ध्यान में बैठे हुए थे। यही ध्यान प्रभात काले दर्शन दे दो, हे भोले भाले दर्शन दे दो। एक साधु बैठा था एक पत्थर के ऊपर। ना जाने कितने वर्षों से वहां बैठ के तपस्या कर रहा था। गर्मी हो सर्दी हो तपती हुई धूप हो, जब पत्थर कड़कती धूप में गर्म हो जाता है, लेकिन वह साधु पत्थर से टस से मस नहीं होता था। आंखें मूंदे हुए ईश्वर के ध्यान में, हे भगवान पल भर के लिए दर्शन दे दो। दूसरी ओर दूसरा साधु पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, पत्तों की सरसराहट के बीच में बैठा हुआ। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, हवाएं साई साई चल रही हो, पत्ते गिर रहे हो या उग रहे हो, लेकिन वह अपने स्थान से ना हिलता था। नारायण के दर्शन चाहता था। ओम नमो नारायण। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ उसके आराध्य देव प्रभु नारायण अवश्य दर्शन देंगे। जो भक्त की लालसा होती है ना, जो भक्त के भीतर परमात्मा के लिए प्रेम होता है, जब वो बहता है बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के निकल जाता है आगे, ईश्वर भक्त के वश में है। कई वर्ष बीत गया, दोनों साधु अपने अपने स्थान पे बैठे हुए, अपने अपने आराध्य देव शायद एक ही हूं, परमात्मा तो एक ही है। एक दिन क्या हुआ, उस मार्ग से नारद मुनि जा रहे थे, अचानक साधुओं की नजर नारद मुनि पर पड़ी, विचलित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे महर्षि नारद भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के दरबार में नित्य जाते रहते हैं। जैसे ना हमारे साथ भी होता है, ऐसे देखा जाए तो हम किसी से मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, और आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति आता है जो नित्य उनसे मिलता है, आप कहते हैं काश मैं उनकी जगह होता। इसी प्रकार से दोनों साधु मन में विचार करने लगे, नारद मुनि कितने भाग्यशाली हैं, जब चाहे नारायण के दर्शन कर लेते हैं, जी भर के दर्शन करते हैं, उनसे संभाषण करते हैं। हम मनुष्य वर्षों वर्षों से तपस्या करते हैं, फिर भी पता नहीं होता दर्शन होंगे या नहीं। साधु ने अनायास पूछ डाला, महर्षि नारद आपके आगमन से हमें प्रसन्नता हुई। उनको आसन दिया जो भी उनके पास था, उनके चरणों को जल से धोया, उनको पीने के लिए जल दिया, फलाहार दिया। पूछा नारद मुनि से, प्रभु आप तो भगवान नारायण को मिलते रहते हैं, एक हमारा छोटा सा काम कर दो। हे प्रभु, एक बार आप भगवान विष्णु से पूछना कि हमें दर्शन कब देंगे। कितने वर्षों से उनको याद कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हमारी तपस्या वहां तक पहुंचती भी है या नहीं, हमारी आराधना वहां तक पहुंचती भी है या नहीं। ये पता चल जाता कि नारायण कब तक आएंगे, कब दर्शन देंगे, थोड़े हृदय को शांति मिलती। नारद मुनि बोले ठीक है, जब मैं जाऊंगा पूछूंगा, अगली बार आपको बता दूंगा। थोड़े समय के बाद नारद मुनि वहां से चले गया। नारद मुनि धरती का भ्रमण करने के पश्चात वापस पहुंचे वैकुंठ धाम नारायण की सेवा में। अचानक याद आया तो नारायण जी ने पूछा, प्रभु भारतवर्ष की पावन भूमि पर वहां मुझे दो साधु मिले थे, एक पत्थर पे बैठा हुआ था, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। ना जाते कितने वर्षों से आपके ध्यान में मगन है, आपकी तपस्या कर रहे हैं, उन दोनों का एक ही प्रश्न था कि आप उनको दर्शन कब देंगे। प्रभु नारायण बोले, देखो जो साधु पत्थर पे बैठा हुआ है उसके कहिएगा 30 वर्ष और तपस्या कर ले, मैं दर्शन अवश्य दूंगा। 30 वर्ष 30 इयर्स। और जो साधु पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है उससे कहना, जितने पीपल के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं उनको दर्शन दूंगा। पीपल के वृक्ष में कितने पत्ते होंगे, हजारों की संख्या में होंगे। नारद मुनि थोड़ा तक पका गए लेकिन कुछ बोले नहीं। नारायण से आज्ञा लेके एक बार फिर किसी काम से धरती पर आए, उसी मार्ग से जा रहे थे जहां पर दो तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। दोनों तपस्वी प्रफुल्लित हो गए, उनको लगा कि नारायण ने उनकी विनती सुन ली है, आज हमें सुनने को उत्तर मिलेगा कि हमारे आराध्य देव हमें कब दर्शन देंगे। जो पत्थर पे बैठा था साधु पहले उससे बात की। वह साधु बोला, महाराज महाराज आपका स्वागत है, क्या आप हमारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं? हम उत्सुक हो रहे हैं जानने के लिए, हमारा हृदय बाहर निकलने को है, हमारे से रहा नहीं जा रहा, इंतजार नहीं हो रहा, प्रतीक्षा नहीं हो रही। नारद जी बोले, देखो ऐसा है, भगवान विष्णु आप पे बड़े प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा, तुम 30 साल और तपस्या करो, जस्ट 30 more years, वे आपको दर्शन अवश्य देंगे। कहते हैं साधु का मुंह एकदम छोटा हो गया, क्या बात करते हैं नारद जी। मैंने अपने जीवन के 20, 30, 40 वर्ष तो लगा दिए हैं तपस्या में, मैं जवानी में आया था, मेरी पूरी जवानी खत्म हो गई, मैं बुढ़ापे में कदम रख चुका हूं, मैंने संसार को भोगा नहीं, मैंने संसार का त्याग किया, मैंने भोगों का त्याग किया, ये सोच के कि तपस्या करूंगा भगवान नारायण के मेरे को दर्शन देंगे, और आज इतने वर्षों की तपस्या के बाद नारायण कह रहे हैं कि 30 वर्ष और तपस्या करो। अब ये भी पता नहीं है कि 30 वर्ष के बाद नारायण आएंगे भी नहीं, मेरे को तो लगता है कि परमात्मा है ही नहीं शायद, हम तमें व्यर्थ कर रहे हैं। मैं चला संसार की ओर, मैं संसार में जा रहा हूं, संसार को भोगूंगा, पता नहीं कब सांस बंद हो जाए, ना इधर के रहे ना उधर के। अपने कमंडल को उठाया और चल पड़े विचलित होकर, दुखी होकर, परेशान होकर। नारद मुनि ने देखा जो दूसरा व्यक्ति जो था, दूसरे साधु थे, वो अब भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के आंखें मूंदे हुए हैं। नारद मुनि ने सोचा, मैं कन्नी काट लेता हूं, यहां से निकल लेता हूं, क्योंकि उसको तो कहा है जितने पीपल के पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद दर्शन दूंगा, इतने जन्मों तक तपस्या करनी पड़ेगी। जब इसको बोला है 30 वर्ष तक, ये साधु चला गया छोड़कर सब कुछ, उसकी क्या हालत होगी? नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें दुख नहीं दूंगा। चुपके से उठे, जा ही रही थी कि अचानक साधु महाराज ने अपने नेत्र खोले, मुस्कुराए, नारद मुनि जी कहां जा रहे हैं? बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन हुए हैं, थोड़ा आपका स्वागत करने का अवसर हमारे को भी दीजिए ना। नारद मुनि के चरणों को धोया, शनामत को घनैन किया, नारद जी को जल दिया, फल दिए खाने के लिए, उनकी सेवा करी। बोले, महाराज सब कुशल तो है, आज कैसे आना हुआ? नारद मुनि सोचने लगे, शायद ये अपना प्रश्न भूल गया है, तो अच्छा है चुप ही रहो। लेकिन साधु जी ने वो पूछ ही लिया, महाराज अगर आपकी नारायण से भेंट हुई हो तो शायद आपने प्रश्न पूछा हो, अगर आपको स्मरण रहा हो तो, अगर उसका उत्तर मिल जाता तो अच्छा होता। नारद जी बोले, भैया पूछो मत, तुम अपनी तपस्या करो। महाराज क्या आप नारायण से मिले थे? मैं नारायण से मिला था बंधु, तो उन्होंने क्या बोला मेरे लिए? हे साधु, उन्होंने कहा है कि जितने इस पीपल के पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्मों की तपस्या के बाद वे आपको दर्शन देंगे। और नारद मुनि ये सोच के घबरा रहे थे कि यह साधु अभी अपने कमंडल को फेंकेगा और भाग जाएगा संसार की ओर। लेकिन ये क्या, वह साधु वहां पर उठ के नाचने लग गया, नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। खुशी का पारावार नहीं रहा। जब बहुत ज्यादा आनंद आता है आदमी नाचने लग जाता है, अपनी खुशी को कैसे प्रकट करे। नारद मुनि हैरान भौचक्के रह गए, हुआ क्या है ये साधु महाराज, क्या हुआ। कहते मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मेरे परमात्मा मेरे को दर्शन देंगे, चाहे हजार जन्मों के बाद दें लेकिन देंगे तो सही। उन्होंने इतना तो कह दिया मुझे दर्शन देंगे, 1000 क्या, मैं 10000 वर्ष की तपस्या करने को तैयार हूं। 10000 वर्ष क्या, 10000 जन्मों की तपस्या करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे नारायण मेरे प्रभु मेरे इष्टदेव मेरे को दर्शन तो देंगे, मुझे उसकी प्रसन्नता है, मैं आपका आभारी हूं नारद मुनि। नारद मुनि हैरान, एक तरफ एक साधु का बोला कि 30 वर्ष और तपस्या करो, वह तो चला जाए छोड़ के। इनको बोला कि जितने पीपल के पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्मों की तपस्या के बाद जन्म देंगे। ये प्रसन्न हो रहा है, वह सोच ही रहते अचानक बिजली कौन दी। बिजली कौन दी, वहां पर नारायण प्रकट हो गए, फूलों की वर्षा होने लगी, आकाश में सारे देवता प्रकट हो गए, देवियां प्रकट हो गए, सारे फूलों की वर्षा करने लग गए। खाली नारायण नहीं, समस्त देवगण वहां प्रकट हो गए। नारद मुनि को समझ नहीं आया, यह साधु तो अपने भाग्य को सराहने लग गया, विचार करने लग गया, मैंने तो ऐसा कोई चीज नहीं किया, तपस्या करी नहीं तो सबके दर्शन एक साथ हो गए। उन्होंने झुक के नारायण के चरणों को स्पर्श किया, स्पर्श करना क्या था, ब्रह्म संबंध हो गया, समाधि लग गई। नारद जी बोले, महाराज आपने तो मेरे को झूठा साबित कर दिया, आपने कहा था जितने पीपल के पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद दर्शन देंगे, उतने जन्मों की तपस्या के बाद दर्शन देंगे, लेकिन आज आप अचानक एक क्षण में प्रकट हो गए, इतने त्यागी देवताओं को समस्त देवताओं को लेकर देवियों को लेकर, इन सबके दर्शन तो मुझे भी एक साथ कभी नहीं हुए। प्रभु नारायण बोले, इसको दर्शन तो मैंने देना था इतने जन्मों की तपस्या के बाद, लेकिन इस वक्त जो इसके हृदय में भाव था, इस वक्त जिसके हृदय में मेरे लिए प्रेम था, वो इतना प्रबल था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे आना पड़ा कि मेरे भक्त मुझे पुकार रहा है, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। जब कोई हृदय से मेरा भक्त मुझे पुकारता है, जब प्रेम को मेरे पर उड़ेलता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। परमात्मा को केवल आपका प्रेम चाहिए, ये कभी नहीं सोचना कि मेरी तपस्या कब फलीभूत होगी। आपकी तपस्या कभी भी फलीभूत हो सकती है, इसी क्षण एक क्षण में हो सकती है। जिस दिन परमात्मा के लिए प्रेम उभर गया उमड़ गया,
प्रेम का प्रवाह होने लग गया, प्रेम की धाराएं बहने लग गई, आपको चारों ओर केवल ईश्वर नजर आने लग गया, आप संसार में ईश्वर के सिवा कुछ भी ना चाहते हो, आप ईश्वर में हो गए हो, तन मन धन आपका सब कुछ ईश्वर में डूब गया हो, मिल गया हो, रंगित हो गया हो, घुल गया हो, विचलित हो गया हो, जैसे गंगा बहते हुए सागर में आती है, गंग सागर में, तो गंगा गंगा नहीं आती, सागर का रूप ले लेती है। इसी प्रकार से कोई भक्त जब प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में डूब जाता है, वह मानव नहीं रह जाता, वह स्वयं ईश्वर बन जाता है। गॉड इज लव, लव इज गॉड, परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। आपकी तपस्या कभी भी फलीभूत हो सकती है, एक क्षण में हो सकती है, एक पल में हो सकती है, एक सेकंड में हो सकती है, एक विपल में हो सकती है। इस साधु के अंदर एक विश्वास था, आत्मिक विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी ही आत्मा पे विश्वास था कि मेरे आराध्य देव मेरे भीतर हैं, मेरे सामने उपस्थित होंगे, प्रकट होंगे। मीराबाई को दर्शन हुए भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण में समा गई। भिलनी के घर पे चल के प्रभु राम समय पहुंच गए। महात्मा विदुर के घर में भगवान कृष्ण समय पहुंच गए भोजन करने के लिए। राधा स्वयं सदैव कृष्ण के मगन में, श्री कृष्ण के ध्यान में मगन रहती थी। हर जगह कृष्ण दिखते थे। माता सीता वनवास में होते हुए भी, माता सीता रावण के महल में होते हुए भी, वृक्ष के नीचे बैठते हुए भी, सब जगह केवल भगवान राम को दर्शन करती थी। हमें बदलना है तो अपनी विचारधारा को, हमें बदलना है तो अपने हृदय की दिशा को, हमें कोई प्राथमिकता देनी है जीवन में कोई चीज की, वो होना चाहिए ईश्वर। गॉड कम्स फर्स्ट। ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, और ईश्वर केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बंधु। ईश्वर केवल प्रेम से मिलेगा, केवल प्रेम, प्रेम। जय श्री सायनाथ।